हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। विधिक आंशी को डिनर करने के लिए बाहर लेकर आया था, जहाँ उसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। आंशी ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। डिनर के बीच में विधिक रेस्टरूम यूज़ करने के बहाने बाहर गया था। उसने आंशी का टेस्ट लेने के लिए अपना मोबाइल बाहर ही रख छोड़ा था। विधिक के बाहर जाते ही आंशी ने उसका मोबाइल ले लिया था। आंशी विधिक के टेस्ट में फेल हो चुकी थी। इससे विधिक को बहुत गुस्सा आया और वो जल्दी से बाहर आया। बाहर आते ही उसने आंशी के हाथ से मोबाइल छीना और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया। आंशी का चेहरा दूसरी तरफ झुका हुआ था और उसकी आंखों में आंसू था। विधिक ने उसे इतना कस के थप्पड़ मारा था कि उसके गाल पर विधिक की उंगलियों के निशान थे और होंठ के कोने से खून निकलने लगा। विधिक का ध्यान इस वक्त आंशी के बजाय अपने मोबाइल में था। उसने मोबाइल में देखा, आंशी खुद की फ़ोटोज क्लिक कर रही थी। उसने कॉल हिस्ट्री निकाला तो वहाँ कुछ नहीं था। विधिक आंशी के सामने से लगभग 5 मिनट के लिए दूर हुआ था। उसके पीछे से उसने टेबल, अपनी रिंग और अकेले काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक कर ली थीं। विधिक ने आंशी की तरफ देखा, जो मासूमियत से रोते हुए उसकी तरफ देख रही थी। विधिक ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और धीरे से कहा, आई एम सॉरी बटरफ्लाई, वो मुझे लगा। बोलते हुए विधिक आंशी के करीब आने लगा। आंशी विधिक के पास आने पर कुछ कदम पीछे हो गई। विधिक के बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आंशी रोते हुए बोली, क्या लगा तुम्हें? यही ना कि मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ? तुम्हारे पीछे से तुम्हारा मोबाइल लेकर किसी और को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ? जब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो बाहर क्यों लेकर आए? ये प्रपोज करने का दिखावा क्यों किया? बोलते हुए आंशी जोर जोर से रोने लगी। उसने रिंग निकाली और विधिक के हाथ में रखते हुए कहा, मुझे घर जाना है विधिक। मेरी बात तो सुनो बटरफ्लाई। विधिक ने आंशी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो हॉल से बाहर निकल चुकी थी। वहीं विधिक को इतना गुस्सा आया कि उसने वहां रखा टेबल उलट दिया था। वो जोर से चिल्लाकर बोला, एक बार चेक नहीं कर सकते थे क्या कि वो क्या कर रही है? मैंने उसे थप्पड़ लगा दिया, वो भी इतनी जोर से। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ उसके साथ? जब देखो मेरे दिमाग में उसके खिलाफ उल्टी सीधी बातें चलती रहती हैं, जबकि मैं उसे इतना प्यार करता हूँ। आई एम सो सॉरी बटरफ्लाई, मैं ऐसा सच में नहीं करना चाहता था। प्लीज़ मेरा यकीन करो, मुझे तुम्हें अपने करीब लाना था, ना कि इस तरह और दूर करना। आंशी गाड़ी में जाकर बैठ चुकी थी। विधिक अब तक गाड़ी भी नहीं आया था। आंशी उसके आने का वेट कर रही थी। उसके गाल पर दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन दिल ही दिल में उसे राहत महसूस हो रही थी कि आज वो पकड़ी नहीं गई। आंशी ने अपने बैग से एक टिश्यू निकाला और अपने होंठ के कोनों का खून साफ करने लगी। उसने अपने मन में कहा, थैंक गॉड आज मैंने रिस्क नहीं लिया। अब मुझे विधिक का यकीन जीतने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद मेरे पास आएगा और माफ़ी के लिए गिड़गिड़ाएगा। भले ही मैं आज अमन को अपनी लोकेशन नहीं बता सकी, लेकिन मैंने विधिक का यकीन जीत लिया। इसी बहाने विधिक मुझसे दूर भी रहेगा और आगे से शक करने का रिस्क भी नहीं लेगा। बी स्ट्रांग आंशी, तुम ये कर लोगी। आंशी अपने होठों के कोनों का खून साफ कर रही थी, तभी गाड़ी के अंदर विधिक गया। उसने आंशी की तरफ देखा। उसने आंशी के हाथ से टिश्यू लेना चाहा, लेकिन आंशी ने हाथ के इशारे से उसे दूर रहने को बोल दिया था। विधिक भी अब जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। वैसे भी आज उसकी हरकत की वजह से आंशी काफी हर्ट हो गई थी। विधिक आंशी को लेकर अपने विला के लिए निकल गया। पूरे रास्ते आंशी ने एक शब्द नहीं बोला, बस विधिक को उसके रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो चाहकर भी उसे चुप नहीं करवा पा रहा था। लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद विधिक आंशी को लेकर अपने विला पहुंच चुका था। वहां आते ही आंशी सीधा अपने रूम में जाने के लिए निकल गई। वहीं विधिक उसके पीछे आ रहा था तो उसे हरलीन मिली। विधिक को देखते ही हरलीन उसके पास आकर एक्साइटेड होकर बोली, कैसी रही तुम्हारी डेट? तुमने उसे प्रपोज तो कर दिया था ना? विधिक ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। उसने हाँ भी कह दिया है। बुआ मैं काफ़ी थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है। बटरफ्लाई भी काफ़ी टायर्ड थी, तभी वो ऊपर चली गई। हरलीन ने विधिक की बात पर हामी भरी। विधिक वहां से चला गया। उसके जाने के बाद हरलीन उसकी तरफ देख रही थी। वो धीरे से बोली, अगर उसने हाँ कह दिया है तो तुम परेशान क्यों हो विधिक? आई होप तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो, क्योंकि बहुत सारी मुसीबतों के बाद तुम दोनों फिर से एक होने जा रहे हो। मैं अपने बच्चों की आंखों में खुशी देखना चाहती हूँ, ना कि इस तरह चेहरे पर परेशानी। हरलीन वहां से अपने कमरे में चली गई। वहीं विधिक रूम में आया तो उसने देखा आंशी ने चेंज भी नहीं किया था और वो वैसे ही जाकर बेड पर सो गई थी। आंशी बिल्कुल कोने पर सोई हुई थी और उसने ब्लैंकेट अपने मुंह पर ओढ़ रखा था। विधिक ने अपना ब्लेजर उतारकर फेंका और फिर आंशी के पास गया। उसने आंशी का ब्लैंकेट उठाया और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, अभी तक रो रही हो बटरफ्लाई? बात करनी है मुझे तुमसे। अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मेरा गिल्ट कभी दूर नहीं होगा। आंशी विधिक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चेहरा नीचे करके बैठी थी। विधिक ने उसका चेहरा उठाया और उसकी आंखों में देखा। रोने की वजह से आंशी की आंखें लाल हो गई थी। फिर उसने आंशी का चेहरा पकड़कर साइड में किया तो उस पर उसकी उंगलियों के निशान थे। विधिक ने आंशी का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, नाराज हो मुझसे बटरफ्लाई? तुमसे कैसे नाराजगी विधिक? तुम मेरे अपने थोड़ी ना हो। पहले भी मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना था, पहले भी तुमने यही किया था मेरे साथ। चाहते तो प्यार से मना सकते थे, लेकिन लंदन में उस घर में तुमने मुझे होस्टेज बनाकर रखा, मेरे साथ टॉर्चर किया, मुझे मारा पीटा। यही करना आता है तुम्हें, अभी भी तुम वही करने वाले हो। बोलते हुए आंशी की आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ ये सब। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हें तकलीफ देकर मुझे खुद को दर्द महसूस होता है। अगर ये हाथ तुम पर उठा है ना बटरफ्लाई, तो मैंने इस हाथ को बहुत सजा दी है। सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ था, फिर भी तुम ऐसा कह रही हो। मुझे धोखे से सख्त चिढ़ है। तब भी तुमने धोखा देने की कोशिश की, और आज भी। विधिक बोलते हुए रुक गया, क्योंकि आज उसका अंदाजा गलत निकला था। आंशी विधिक की बात को पूरा करते हुए कहा, लेकिन आज तो मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था विधिक, फिर भी तुमने मुझ पर हाथ उठाया। हाँ, जानता हूँ इस बार मुझसे गलती हो गई। आई प्रॉमिस आगे से ऐसा नहीं होगा। बटरफ्लाई प्लीज इस तरह मुझसे नजरें मत फेरो, मैं सह नहीं पाऊंगा, विधिक ने जवाब दिया। उसकी आंखें नम होने लगी थीं। आंशी विधिक को अच्छे से जानती थी। उसकी आंखों में नजर आ रहा था कि आंशी को थप्पड़ मारने के बाद उसे भी कितना दर्द महसूस हो रहा था। उसने आंशी को छोड़ा और उठकर अपने हाथों को वहां दीवार पर जोर जोर से मारने लगा। 3 से 4 बार पंच करने के बाद विधिक के हाथ में खून आने लगा, फिर भी वो नहीं रुका। आंशी उठकर विधिक के पास गई। इस बार वो पंच करने वाला था, तभी आंशी ने अपना हाथ दीवार पर रख दिया। इससे आंशी के हाथ को चोट तो लगी थी, लेकिन विधिक रुक गया था। आंशी के ऐसा करने पर विधिक उसके गले लग गया और फिर भारी आवाज में बोला, आई एम रियली सॉरी बटरफ्लाई, प्लीज इस बार के लिए माफ कर दो। आई स्वेर आगे से कभी तुम पर शक नहीं करूंगा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। विधिक ने आंशी को कसके गले लगा रखा था, तो वहीं आंशी के हाथ बिल्कुल सीधे थे। वो उसके हक का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी।
कुछ देर बाद आंशी विधिक से अलग हुई और सिसकते हुए कहा, सॉरी विधिक, लेकिन मुझे अब तुम पर यकीन नहीं है। मैंने तो तुम्हारा भरोसा जीत दिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। यकीन दिलाओ विधिक कि फ्यूचर में तुम मुझ पर शक नहीं करोगे और मुझे प्यार से रखोगे। इस बात की क्या गारंटी है? कल को तुम्हारा दिल मुझसे भर गया तो तुम मुझे जान से नहीं मारोगे या कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे मुझे तकलीफ ना हो? जिस दिन तुम मुझे यकीन दिलाने में कामयाब हो गए विधिक, उसी पल मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। फिर उसके लिए शादी जैसे दिखावे की जरूरत नहीं है। आंशी ने खुद को मजबूत करके अपने दिल की बात विधिक के सामने रख दी थी। उसके बाद आंशी चेंज करने के लिए वार्डरोब एरिया में चली गई। वो नाइट सूट पहनकर बाहर आई। उसने देखा विधिक भी चेंज कर चुका था। हमेशा वो उसके साथ सोता था, चाहे दूर ही क्यों ना सोना पड़े, लेकिन आज विधिक पिलो और ब्लैंकेट के साथ बाहर जा रहा था। बाहर जाने से पहले विधिक ने आंशी की तरफ देखकर धीरे से कहा, मैं बाहर काउच पर सो रहा हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आ जाना मेरे पास, तुम यहाँ कंफर्टेबल होकर सो सकती हो। और हाँ, जब तक तुम्हें यकीन नहीं दिला देता, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा बटरफ्लाई। अपनी बात खत्म करके विधिक बाहर चला गया। उसके जाते आंशी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। देर से ही सही, लेकिन उसने अपनी पहली जीत हासिल कर ली थी। उसने विधिक को अपने लॉयल होने का यकीन दिला दिया था, तो अब बारी विधिक की थी। आंशी वहां खड़ी अपनी पहली जीत के बारे में सोचकर खुश हो रही थी, तभी उसकी आंखों के सामने उसे अंधेरा सा महसूस हुआ। आंशी को सब घूमता हुआ नजर आ रहा था। उसे चक्कर जैसा महसूस हुआ। वो गिरती उससे पहले उसने बेड को पकड़ लिया। शायद बीपी लो हो रहा है, आंशी ने धीरे से कहा, और फिर रूम के अंदर लगे मिनी रेफ्रिजरेटर से लेकर चॉकलेट खाने लगी। वैसे भी विधिक ने जो भी किया था, उसके बाद उसे रिलैक्स करने की जरूरत थी।